तारीख 28 मई दिन गुरुवार, दिन भर के साथ में विनीत खरे। गुर्जर आंदोलनकारियों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने के संकेत। त्रिपुरा से 18 साल बाद विवादित कानून आफ्सपा हटा।
त्रिपुरा में भी आफ्सपा हट गया है, लेकिन अगर कल कुछ होता है और उस कार्यवाही में कोई सामान्य व्यक्ति मारे जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों, तो उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हो भी पाएगी, इसके बारे में भी एक डाउट है।
गर्मी से मरने वालों की संख्या 1300 के पार।
यूवी लेवल के लेवल्स बहुत अधिक हैं, और जिसके कारण कि आपको हीट स्ट्रोक बहुत तेजी से लगता है।
भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच फीफा अध्यक्ष ने इस्तीफा देने से किया इनकार। साथ में आपकी राय, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने इस्तीफा देने से इनकार किया है। यूरोपीय फुटबॉल संस्था यूएफए के प्रमुख माइकल प्लैटिनी ने इस मुद्दे पर बुलाई गई आपातकालीन बैठक के बाद ब्लैटर से इस्तीफे की मांग की। बुधवार को अमरीका में फीफा के 14 अधिकारियों पर गुटबाजी, धोखाधड़ी और वित्तीय हेराफेरी करने के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि ब्लैटर पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद फीफा विश्व कप की सबसे बड़ी प्रायोजक कंपनी वीसा ने कहा है कि वो अपनी स्पॉन्सरशिप पर पुनर्विचार करेगी। अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर ने चीन को आगाह किया है कि वो दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम बंदरगाह बनाने से बाज आए। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 11 दिन की यात्रा पर रवाना होने से पहले कार्टर ने कहा कि इस विवादित क्षेत्र में चीन की यह प्रस्तावित कोशिश अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ावा देगी। एश कार्टर ने कहा,
We want a peaceful resolution of all disputes and an immediate and lasting halt.
हम सभी विवादित मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। हम किसी भी विवादित क्षेत्र में सैन्य हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करते हैं। दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम बंदरगाह बनाने के इस कदम से चीन इस विवाद को और हवा देना चाहता है और इस क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। इस मुद्दे सहित सभी विवादित विषयों पर सहयोगात्मक रवैया होना जरूरी है। ये थे अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका का उद्देश्य इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत सरकार पर देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा जबरन थोपने का आरोप लगाया है। दिल्ली में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी राज में संघ की विचारधारा जबरदस्ती थोपी जा रही है और शिक्षा विभाग में संघ का दखल है। राहुल ने केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम पर भी सवाल उठाए और कहा कि मेक इन इंडिया से कुछ नहीं होगा, कुछ उद्योगपतियों का भला कर देने से मेक इन इंडिया नहीं होता। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। त्रिपुरा सरकार ने सेना को विशेष अधिकार देने वाला विवादित कानून आफ्सपा 18 साल बाद हटा दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने मुख्यमंत्री माणिक सरकार के हवाले से कहा है कि बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इसे हटाने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रभावित इलाकों के हालात की हर 6 महीने समीक्षा की। इस मसले पर राज्य पुलिस और राज्य में तैनात सुरक्षा बलों से भी चर्चा की गई। राज्य में वामपंथी पार्टी की सरकार है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने म्यांमार की लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू की से कहा है कि वो अपने देश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या सुलझाने के लिए और प्रयास करें। दलाई लामा के मुताबिक सू की जैसे बड़े नेता के समर्थन की रोहिंग्या मुसलमानों को सख्त जरूरत है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में कार्यक्रम दिनभर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। थोड़ी देर पहले खबर आई है कि राजस्थान में गुर्जर आंदोलनकारियों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। गुर्जर समुदाय के लोग कई दिनों से भरतपुर जिले में रेल मार्ग पर धरना दिए बैठे थे, जिससे अनेक गाड़ियों का मार्ग बदलना पड़ा। जयपुर से नारायण बारे टेलीफोन लाइन पर हैं। नारायण, क्या ब्रेक थ्रू है, क्या खबर है ताजा?
पिछले 1.5 घंटे से राज्य सचिवालय में जारी बैठक में अब निर्णायक मोड़ आ चुका है और ऐसे इशारे मिले हैं दोनों पक्षों से कि शायद आज कोई सुलह सफाई हो सकती है। इससे पहले मीटिंग का समय 2 बार बदला गया क्योंकि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही वो जयपुर पहुंचे हैं, उनके साथ बातचीत के बाद विधिवत बैठक शुरू हो चुकी है। उसमें राज्य के 3 मंत्री शामिल है, कुछ अधिकारी शामिल है और कोई ऐसा प्रस्ताव लाने की कवायद की जा रही है कि जिसमें कोई कानूनी अड़चन न हो। गुर्जर नेताओं की मांग है कि सरकार आरक्षण के लिए अलग से विधेयक लाए जिसे विधानसभा पारित करे और प्रयास ये भी किया जाए कि उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि अदालत को चुनौती।
लेकिन नारायण जी, लेकिन बदला क्या है, ये ब्रेक थ्रू किस पॉइंट पर हुआ, ये क्या पता चला है?
असल में हाईकोर्ट की फटकार के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों को फटकारा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सड़क और राजमार्ग रेल मार्ग बंद पड़े हैं और तुरंत इनको हटाने के लिए कहा। इसके बाद से दोनों पक्ष काफी हरकत में आए और दोनों झुके हैं। बैंसला बैठक में शामिल होने से पहले कहा कि कुछ वो झुक रहे हैं, कुछ हम झुक रहे हैं।
झुक कैसे रहे हैं, मतलब क्या ये कुछ पता चल पाया है?
बात ये कि अब तक जो 2008 का प्रस्ताव पहले पारित है उसको खारिज समझा जाए और नया विधानसभा में प्रस्ताव लाके उनको आरक्षण की व्यवस्था की जाए, इस पे शायद कुछ रजामंदी की बात बन रही। इस पे गुजर राजी होने को तैयार हैं और हालात की नजाकत को देखते हुए केंद्र सरकार भी चिंतित है और बड़ी तादाद में भरतपुर और दौसा में केंद्रीय सुरक्षा बल
तैनात। नारायण, बस एक चीज और कि क्या आप माने, फिर माने कि सरकार फिर मान गई ये बात गुजर समुदाय की?
काफी हद तक मान गई है, ऐसा लग रहा है कि बात आज बन जाएगी।
जी बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए, हम आपके पास आएंगे कार्यक्रम के अगले अंक में। और अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा सरकार ने सेना को विशेष अधिकार देने वाले विवादित कानून आफ्सपा को 18 साल बाद राज्य से हटा लिया है। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में से हटाने का फैसला लिया गया। त्रिपुरा में अलगावादी हिंसा बढ़ने के बाद 16 फरवरी 1996 को आफ्सपा लगाया गया था। बीबीसी संवाददाता सुहेल हलीम ने राजधानी अगरतला में स्थानीय पत्रकार मानस पॉल से पूछा कि त्रिपुरा में किन परिस्थितियों में आफ्सपा लगा था।
देखिए 1990 में मिलिटेंसी, सेकंड फेज ऑफ मिलिटेंसी त्रिपुरा में स्टार्ट हुआ था अंडर ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स एंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। विद इन सिक्स ईयर्स बाय 1996 त्रिपुरा में सिचुएशन बहुत खराब हो गया था, बहुत बुरा हो गया था। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वर किलिंग्स, देयर वर मैसेकर्स ऑफ नॉन ट्राइबल्स बंगाली पॉपुलेशन मोस्टली। तो उसका साथ और एक फेनोमेनन आ गया कि एवरी मिलिटेंट अटैक के साथ, एवरी मिलिटेंट अटैक जो मिलिटेंट आउटफिट्स है, ट्राइबल मिलिटेंट आउटफिट्स था उनका साथ, एवरी मिलिटेंट अटैक के साथ एक कम्युनल ओवरट्यूज था, कम्युनल रायट का एक थ्रेट था। उस टाइम पे गवर्नमेंट सोचा था कि आप डिस्टर्ब एरिया एक्ट प्रमालगेट करे त्रिपुरा में। उस टाइम पे ये वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के सम पार्ट्स में खुआई सब डिविजन, कल्याणपुर सब डिविजन, तेलियामुड़ा, सिधाई मोहनपुर एंड टकरजला एरिया, इस पार्ट्स में हुआ करता था। लेकिन सिचुएशन इतना कम्युनल, इतना टेंस हो गया था कि गवर्नमेंट वॉज एप्रीहेंसिव कि ये सिचुएशन स्पील ओवर करना जाए ये पूरा के पूरा स्टेट में।
अब इस एफ्सपा को हटाने की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सिर्फ एक सिम्बॉलिक जेस्चर है?
देखिए पहले बात ये कि हालात जो है त्रिपुरा में अभी तो पीस इज रिटर्न, पीस तो है त्रिपुरा में, ये एफ्सपा का कोई जरूरत तो नहीं लगता है। जिस सिचुएशन में त्रिपुरा में एफ्सपा लागू किया गया था, अब सिचुएशन पूरा के पूरा चेंज हो गया, पूरा के पूरा चेंज हो गया। बहुत सारे पुलिस स्टेशन आ गया, उस टाइम पे था 42 पुलिस स्टेशन, अभी 74 पुलिस स्टेशन एंड बहुत सारे डेवलपमेंट हो गया, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल एसेट्रा एसेट्रा। तो क्या हुआ, तो मिलिटेंसी भी नहीं है अभी कोई, मोस्ट ऑफ दी ट्राइबल लीडर्स, ये मिलिटेंट लीडर्स दे हैव सरेंडर्ड और कैप्चर्ड एंड ऑल। बांग्लादेश के सिचुएशन भी डिफरेंट है क्योंकि त्रिपुरा के जो मिलिटेंट्स बांग्लादेश में जाके शेल्टर, दे यूज्ड टू टेक शेल्टर इन बांग्लादेश, वो भी सिचुएशन डिफरेंट हो गया, वहां पे भी अभी इतना सारे शेल्टर नहीं मिल रहे हैं। तो त्रिपुरा में पीस आ गया, तो एक थोड़ा सा पॉलिटिकल कंसीडरेशन हो सकता है गवर्नमेंट की, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की, क्योंकि इस टाइम पे जो एडीसी इलेक्शन हुआ है, जो हमारे यहाँ जो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है 6 शेड्यूल के अंदर, उसमें जो इलेक्शन हुआ है वेरी रिसेंटली, उसमें 9% ट्राइबल वोट ड्रॉप हो गया लेफ्ट फ्रंट का। तो ये द सिचुएशन इज अ लिटिल बिट यू नो इज नॉट सेटिस्फैक्टरी फॉर द लेफ्ट फ्रंट। तो ऐसा डिमांड है ट्राइबल।
अच्छा, इसका मतलब ये है कि ट्राइबल्स मांग कर रहे थे कि एफ्सपा हटाया जाए और अब चूंकि ट्राइबल्स की वोट कम हुई है तो इस वजह से हटाया गया है।
हाँ ना, वो तो एक पॉलिटिकल कंसर्न है। ट्राइबल लोग ऐसा नहीं कि ट्राइबल लोग ऑल ट्राइबल्स डिमांडिंग एफ्सपा हटाया जाए, ये सम पॉलिटिकल पार्टीज।
ये तो राजधानी अगरतला से स्थानीय पत्रकार मानस पॉल। आफ्सपा उत्तर पूर्व के 4 राज्यों के कुछ इलाकों के अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ जगहों में लागू है। मैंने मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा से पूछा कि क्या मणिपुर से आफ्सपा को हटाने से इसके जो समर्थक है वो ये ना कहेंगे कि आफ्सपा से मणिपुर में स्थिति सुधरी?
आफ्सपा लगाने से स्थिति नॉर्मल हुई है, इसके बारे में तो ये एक कहना चाहिए विवादास्पद मतलब निकालेंगे लोग, क्योंकि पहले तो ये आपको स्थापित करना पड़ेगा कि इतने साल, कई साल आप देखेंगे पिछले कितने सालों से त्रिपुरा के बारे में वहाँ किसी कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, आम कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कोई भी खबर नहीं आई। इसका मतलब है कि वहां स्थिति बहुत पहले सामान्य हो चुकी थी और आफ्सपा को लगाए रखना एकदम ही बेतुका सवाल हो गया था। और उसकी वजह अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के वक्तव्य भी पढ़ें और पहले पिछले साल के और पिछले सालों के भी पढ़ें तो उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद, क्योंकि सीआरपीएफ मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी वाले उसका विरोध करते थे, लिहाजा उसको लेकर उन्होंने कभी आफ्सपा को नहीं हटाया। लेकिन इतने सालों तक स्थिति सामान्य होने की वजह से अब उसको नहीं हटाना उनके लिए एक मुश्किल पैदा कर रही थी।
लेकिन क्या इसका असर आप देखते हैं कि अब जब एक एक राज्य से आफ्सपा हटा है तो ये जो मांग है या फिर इसका असर जो है बाकी के राज्यों में या जम्मू कश्मीर में जहां पर आफ्सपा लगा हुआ है वहां पर उस पर होता हुआ दिख रहा है कि नहीं?
बिल्कुल इसका असर होना चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि इसका असर ज्यादा ज्यादा असर नहीं होगा। आपको याद होगा 2004 में भी मनोरमा देवी के वो रेप और मर्डर के बाद, कस्टोडियल रेप और मर्डर के बाद जब आसाम राइफल्स के जवानों और ऑफिसर्स के हाथों हुआ था, उसके बाद भी सरकार ने इम्फाल शहर से आफ्सपा को हटा दिया था। उसके हटाने के बावजूद बार बार सिक्योरिटी फोर्सेज वालों का कहना यही है कि आफ्सपा हटाने के बाद इम्फाल की स्थिति और बद से बदतर हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल नहीं उठा कि इन पूरे दौर में आफ्सपा और आफ्सपा के अलावा भी जो और कानून है जिससे कि सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह के से पूरी तरह से एक दंड मुक्ति का माहौल मिलता है और पूरी इम्प्यूनिटी के साथ वो काम कर सकते हैं, ऐसा माहौल खत्म नहीं हुआ। त्रिपुरा में भी आफ्सपा हट गया है, लेकिन अगर कल कुछ होता है और उस कार्यवाही में कोई सामान्य व्यक्ति मारे जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों, तो उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई हो भी पाएगी इसके बारे में भी एक डाउट है।
आफ्सपा एक जगह से हट गया है तो फिर बाकी जगहों से हटाने में या उस पर बात करने में आखिर कहां रुकावट है फिर?
ये रुकावट सबसे ज्यादा तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं और खास करके गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के विरोध के कारण, परस्पर विरोध के कारण ये स्थिति बनी रहती है। जम्मू कश्मीर में वो मामले को लेकर वो बाकी दूसरी बात उठाएंगे कि वहां पाकिस्तान का हस्तक्षेप वगैरह वगैरह, और उसका एक्सक्यूज देकर वहां आफ्सपा और जो दंड मुक्ति का एक माहौल दिया हुआ है आर्म फोर्सेस के लिए वो परस्पर बना रहेगा।
ये थे मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा।
भरोसा वही बस जमाना बदला, राजनीति वही बस शासक बदला। बीबीसी हिंदी वही बस प्रोग्राम बदला। बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम अब नए रंग और नए कलेवर में। एक जून से नमस्कार भारत का दूसरा अंक हो जाएगा विश्व भारती और दिन भर का दूसरा अंक कहलाएगा घटना चक्र। सुनिए सुबह 6:30 से 7 तक नमस्कार भारत और 8 से 8:30 विश्व भारती, शाम 7:30 से 8 दिन भर और 9:30 से 10 तक घटना चक्र।
बीबीसी हिंदी सेवा में आप सुन रहे हैं दिन भर का पहला अंक, मैं हूं विनीत खरे। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में टेलीकॉम बिजनेस से जुड़े लोगों पर हो रहे हमलों के बाद वहां इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इलाके में डर और तनाव फैला हुआ है। एक तरफ टेलीकॉम कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है तो दूसरी तरफ लोगों को जान का भी खतरा बना हुआ है। इसी सप्ताह हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई थी और 3 लोग घायल हुए थे। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
पिछले वीरवार से कई घटनाएं हुई हैं, अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हुई है, उनको मारा गया है और 3 लोग जख्मी हैं। और ये सारा विवाद जो है उन संदिग्ध पोस्टरों के बाद उठ खड़ा हुआ है जो सोपोर में नमूदार हुए, जिनमें लिखा गया था कि जिस भी किसी शख्स के घर में मोबाइल फोन के टॉवर लगे हों वो उसको बंद करें, या कोई इस तरह का कारोबार कर रहा हो, फ्रेंचाइज दुकानें चला रहा हो, वो भी बंद किए जाएं। तो इसके बाद ये घटनाएं हुई हैं। अब आज की स्थिति ये है कि सोपोर में टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है और टावर्स के ऊपर उन टावर होस्टस ने तख्तियां लगाई हैं कि टावर्स को बंद किया गया है। पुलिस का कहना है कि चरमपंथियों ने टावर्स पे तख्तियां डिवाइस लगाया था जो पुलिस ने हटाया है, उसके बाद उसका रिएक्शन है ये। लेकिन कई चरमपंथी गुटों ने इसकी निंदा की है और कहा है कि इनका इन घटनाओं के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और अलगाववादियों ने भी इसे एक आतंकवादी गतिविधि करार दिया है।
श्रीनगर से रियाज मसरूर। भारत में पिछले कुछ दिनों में जारी भीषण गर्मी से 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ज्यादातर लोग दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मारे गए हैं। अचानक बढ़ी तेज गर्मी के क्या कारण है, यही सवाल मैंने रखा पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर चंद्रभूषण से।
गर्मी है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में हमारे देश में क्या हो रहा है, पहले जो गर्मी स्लोली पिकअप करती थी, हमारा जो समर सीजन है वो स्लोली पिकअप करता था, मार्च अप्रैल से गर्मी धीरे धीरे बढ़ती थी तो जो हमारी बॉडी है वो एक्लेमेटाइज होती है। जबकि मार्च अप्रैल में काफी ठंड रही है, बारिश हुए हैं, अभी मई पहुंचते पहुंचते अचानक पिछले 2 सप्ताह में इतनी तेजी से गर्मी बढ़ी है कि बहुत जो बुजुर्ग हुए या औरतें हुई या बच्चे हुए उनका जो बॉडी है वो हीट स्ट्रेस नहीं ले पा रहा है। अब हम रिपोर्ट भी देख रहे हैं साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, हमारे अपने मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो यूवी रेडिएशन का जो लेवल है वो डेंजर लेवल से अधिक है। इसका मतलब ये है कि जो सन का जो हार्मफुल रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसका जो इंटेंसिटी अभी तेलंगाना आंध्रा और दिल्ली में भी, आज का रिपोर्ट मैं दिल्ली का भी देख रहा था, यूवी लेवल के लेवल्स बहुत अधिक हैं और जिसके कारण कि आपको हीट स्ट्रोक बहुत तेजी से लगता है।
नहीं तो ये इसका भी क्या कारण है, अगर हम ये जो अचानक 2 हफ्तों में आप बता रहे हैं अचानक गर्मी बढ़ रही है, इसका कोई खास कारण है?
हमारा तो ये कहना है कि ये हमारी जो बदलती क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज जो है, जैसे कि पिछले 6 महीने में मैंने आपको बताया कि जो बिन मौसम बरसात जो कहते हैं, ओले गिरने, इस देश में कम से कम 1 करोड़ एकड़ का जो एग्रीकल्चर है वो डिस्ट्रॉय हुआ है पिछले दिसंबर के बाद। अगर आप देखें आज का ही एक रिपोर्ट आया है वो ये कहता है कि महाराष्ट्र में जो पल्सेस के दाल का जो प्रोडक्शन है कोई 65% इस साल कम होगा। पिछले 6 महीने से जो जिस तरह से वेदर में जो चेंजेस आए हैं, जहां गर्मी होनी चाहिए वहां गर्मी की जगह ठंड रहा है, जहां बारिश नहीं होनी चाहिए वहां बारिश हुई है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा जो क्लाइमेट सिस्टम है वो अनप्रडिक्टेबल होते जा रहा है। और ये क्लाइमेट चेंज के कारण हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, हमारी संस्था में हमारे रिसर्चर्स का ये कहना है कि अब जिस तरह से अनप्रडिक्टेबिलिटी बढ़ते जा रही है और एक्सट्रीम होते जा रही है वेदर, तो ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो सकता है। और ये जो है, ये सारे जो कंप्यूटर मॉडल्स भी हैं वो भी यही बताते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, आज के दिन में पृथ्वी का तापमान जो है वो कोई 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले 100 साल में बढ़ा है, तो आपको दिन में जो है वो हीट स्ट्रोक बढ़ेंगे, दिन का टेम्परेचर बढ़ेगा और रात का भी टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि आजकल हम देखा जा रहा है कि दिल्ली में रात में भी कुछ 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है।
जो लोग आपको सुन रहे हैं चंद्रभूषण, आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे, 3 चीजें जो वो करें खुद को बचाने के लिए?
जिन जगहों पे हीट स्ट्रोक और टेम्परेचर 42-44 डिग्री से अधिक है, आसमान बहुत साफ है, आसमान साफ है इसका मतलब कि यूवी रेडिएशन बहुत अधिक होगा। सलाह ये है कि 11:30 से लेकर 4:30 के बीच में अगर आप अपने मैनुअल लेबर हैं आप और कोई काम करते हैं तो उस काम को आप बंद कर दें, तो सुबह काम करें और शाम को काम करें। दूसरा यह है कि बाकी समय भी सर को ढकें, चेहरे को ढकें और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। इसका मतलब यह है कि पानी का भरपूर सेवन करें, या आपको खरबूजे हो गए, तरबूजा हो गया, जो कि उसका सेवन अधिक करें ताकि आपके बॉडी जो है, आपकी जो शरीर है वो उसमें काफी पानी की मात्रा बढ़ी रहे।
हियर इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर चंद्रभूषण।
दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे और रात 9:30 बजे।
और अब आपकी राय।
आपकी राय। तो जैसा कि दिन है बृहस्पतिवार का और बृहस्पतिवार का दिन आपकी चिट्ठियों का दिन होता है, तो आपकी राय के साथ मैं हाजिर हूँ मोहनलाल शर्मा, और मेरे साथ मुस्कुराती हुई मौजूद है इंदु पांडे।
नमस्ते।
कौन सी चिट्ठी पहले उठा रहे हैं?
ये है अनिल शुक्ला इलाहाबाद से, कहते हैं कि भाई बीबीसी पे हमने मोदी के 1 साल का जो कैंपेन का मुद्दा था वो हमें सुना, इन्होंने पढ़ा भी इन्होंने, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो कैंपेन मोदी के अगेंस्ट था और नाराजगी जाहिर हो रही है इनकी बातों से।
बिल्कुल अनिल शुक्ला भाई, ऐसा कतई नहीं है कि हमने सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री जो है हमारे, हमने सिर्फ उनकी आलोचना की है। हमने तस्वीर का वही पहलू दिखाया है जो कि आपसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, और सही तस्वीर दिखाना बीबीसी का काम है। हम निष्पक्षता पर अपना ध्यान रखते हैं और जो तस्वीर है वो आपके सामने लाते हैं। तो ऐसा न जाने आपको क्यों लग रहा है कि हमने सिर्फ उनके लिए नकारात्मक बातें कही हैं, जबकि अगर सकारात्मक बातें हैं तो वो भी हम जरूर करते हैं।
लेकिन इनको एक दुख भी है, कहते हैं कि भाई आजकल बीबीसी उर्दू सुनना बेहतर लगता है क्योंकि उनके कार्यक्रम में ज्यादा विविधता रहती है।
ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हम ये कहेंगे कि आप बीबीसी उर्दू सुन रहे हैं और हिंदी भी, आप क्या चीज आप और चाहते हैं बीबीसी हिंदी सेवा से, वो भी आप हमें जरूर बताएं।
अगली चिट्ठी हमारे पास आई है आशीष नौटियाल की, ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ जिला रुद्रप्रयाग गढ़वाल से। सबको इन्होंने नमस्कार कहा है और कहते हैं कि मुझे रेहान फजल का प्रोग्राम प्रस्तुति बहुत पसंद है। अविनाश दत्त, मणिकांत ठाकुर, नारायण बारेठ, रामदत्त त्रिपाठी आजकल सुनाई नहीं देते हैं।
इस समय जब इंदु आप ये पत्र पढ़ रही हैं, सामने रेहान फजल साहब बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी बात हो रही है, उनके कार्यक्रम की बात हो रही है और उनके कार्यक्रम जब भी आप सुनते हैं उसकी तारीफ होती है। आज भी वो एक नया कार्यक्रम बना रहे हैं जो कि कल विवेचना आप सुनेंगे। रही बात बाकी हमारे साथियों की, नारायण बारेठ को आजकल आप लगातार गुर्जर आंदोलन पर लगातार रिपोर्टिंग आप उनकी सुन रहे हैं और यदाकदा जब भी जरूरत पड़ती है तो जो हमारे पुराने सहयोगी हैं हमारे बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम में अपना योगदान जरूर देते हैं।
सिर्फ यही है जो कहते हैं कि ब्रजेश उपाध्याय की थप्पड़ की गूंज बहुत सुंदर लगी।
हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो ब्रजेश उपाध्याय की जो वॉशिंगटन डायरी होती है और खासकर जो वुसत साहब की जो डायरी होती है उसकी बड़ी तारीफें आती हैं। और ये जो डायरी के पीस हैं, अभी कुछ दिनों पहले मैंने ब्रजेश से कहा भी था कि भाई आपकी डायरी आजकल कमाल कर रही है।
और इनके कुछ अनुरोध हैं जो इन्होंने बुलेट मार्क में लिखे हुए हैं। कहते हैं कि सभी कार्यक्रमों की समय सीमा बढ़ा करके एक घंटा कर दें। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे से वार्ता पुनः प्रसारित करें। बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष की रेहान साहब की डायरी फिर से बताएं। रेहान जी ने युद्ध की जो जीवंत चित्रण किया है वो सचमुच में रोंगटे खड़े करने वाला था। और ये मेरा पत्र जरूर शामिल करें।
पत्र आपका शामिल हो गया है। और जहां तक आपके अनुरोध की बात है, सबसे पहले आपने समय सीमा की बात की तो फिलहाल हमारे हाथ बंधे हुए हैं। कार्यक्रम का जो समय है वो आधे आधे घंटे का समय है। एक चीज आपसे और कहना चाहेंगे कि एक तारीख से हमारे कार्यक्रमों का जो रंग है वो बदलने वाला है। दो कार्यक्रम नमस्कार भारत 2 और दिन भर 2, इनके नाम बदल जाएंगे। नमस्कार भारत 2 का जो कार्यक्रम होगा ये कहलाएगा विश्व भारती और दिन भर की जो दूसरी सभा है ये घटना चक्र के रूप में आप तक पहुंचेगी। तो हमें इंतजार रहेगा कि नया कलेवर आपको कैसा लगता है, ये जरूर लिखिएगा। समय अभी वही है। और बाकी आपने कहा कि रेहान फजल की जो बांग्लादेश युद्ध से जुड़ी रिपोर्टें हैं, तो वक्त आएगा तो बिल्कुल आप सुनने को मिलेंगी आपको।
और ये चिट्ठी है विनीत कुमार कश्यप, पुतुलाल कश्यप और शिशुपाल कश्यप की, दिस्तापुर पोस्ट रिहारिया मोहम्मद लखीमपुर खीरी से। बहुत सारे प्रोग्रामों की इन्होंने बहुत तारीफ की है, कुल मिला के इन्हें बहुत अच्छा लगता है बीबीसी को सुनना।
बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से आप हमारी हौसला अफजाई करते रहे, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है।
जंग बहादुर सिंह गोपाल पहाड़ी से।
अच्छा, फिर से हमारे कार्यक्रम में शामिल हैं आज एक बार फिर।
जी, केरल उच्च न्यायालय के फैसले के माओवाद का सदस्य होना या विचारधारा से प्रेरित होना अपराध नहीं हो सकता। इसी पर आधारित स्पेशल रिपोर्ट सुश्री दिव्या आर्य के सौजन्य से इन्होंने सुनी और कहते हैं कि जजमेंट से सहमत हैं और नहीं भी हैं। ठीक है, अगर माओवाद का विचारधारा से सहमत हूं तो सहमति मात्र मुझे अपराधी नहीं बना सकता।
बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल पहाड़ी से। जंग बहादुर सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में लगातार टिप्पणियां करते हैं, आपको जो पसंद आता है वो अच्छा लगता है। इस बार आपने दिव्या आर्य की रिपोर्ट सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से पत्र लिखते रहे, अपने ईमेल लिखते रहे। तो अब वक्त इतना नहीं है कि हम अब और चिट्ठी पढ़ पाएंगे इंदु।
जरूर, अब विदा लेते हैं।
कार्यक्रम का पता आप जानते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
आपकी राय पेशकश थी मोहनलाल शर्मा और इंदु की। भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप प्लैटर ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उधर यूरोप में फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था यूएफा प्रमुख मिशेल प्लैटिनी ने कहा है कि फीफा प्रमुख के लिए होने वाले चुनाव में ज्यादातर सदस्य सेप प्लैटर के प्रतिद्वंदी जॉर्डन के प्रिंस अली के पक्ष में वोट डालेंगे। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों के सार के साथ वैभव श्रीवास्तव।
फीफा में भ्रष्टाचार के मामले के खुलासे की वजह से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भी अध्यक्ष सेप ब्लैटर अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे। यूरोप में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था यूएफए का कहना है कि होने वाले चुनावों में वो ब्लैटर के प्रतिद्वंदी का समर्थन करेंगे। अमरीकी अधिकारियों के अनुरोध पर स्विट्जरलैंड में फीफा के 7 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अधिकारियों पर करीब $15 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। इस गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही स्विट्जरलैंड ने भी 2018 और 2022 विश्व कप की मेजबानी पाने की प्रक्रियाओं में रिश्वतखोरी की जांच शुरू कर दी है। स्विट्जरलैंड की पुलिस ने ज्यूरिख में फीफा के मुख्यालय पर छापा मारकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। आज फीफा की बैठक होने वाली थी जिसमें नई समिति के कार्य की शुरुआत होनी थी, परंतु हाल ही में सामने आए घोटाले के बाद अध्यक्ष सेप ब्लैटर इस समिति की बैठक में नहीं आ पाए। वहीं फीफा के पूर्व सलाहकार माइकल हर्शमैन ने अध्यक्ष ब्लैटर पर निशाना लगाया और कहा कि उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार बढ़ा है। उनका ये कहना कि फीफा भ्रष्टाचार मिटाने में लगी हुई है बिल्कुल गलत है। सेप ब्लैटर अध्यक्ष के रूप में 30 सालों से काम कर रहे हैं और उनकी ही वजह से भ्रष्टाचार को पनपने का मौका मिला है। फीफा के पूर्व सलाहकार माइकल हर्शमैन के शब्द। अमरीकी अटॉर्नी जनरल लोरेटा लिंच के मुताबिक फीफा अधिकारियों ने साल 2010 के विश्व कप के आयोजन के अधिकार दक्षिण अफ्रीका को दिलाने के लिए कथित तौर पर घूस ली थी। उन्होंने फीफा पर 2011 के अध्यक्ष चुनाव और 2016 में अमेरिका में होने वाले कोपा अमेरिका टूर्नामेंट में भी घूसखोरी का आरोप लगाया। फुटबॉल के महान खिलाड़ी डिएगो मैराडोना ने कहा है कि फीफा को फुटबॉल और पारदर्शिता से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा, फीफा के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने जांच करवाई, ये बिल्कुल झूठ है। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे लगता है कि उन्हें फुटबॉल से नफरत है और पारदर्शिता बिल्कुल पसंद नहीं। बिजनेस काफी हो गया, अध्यक्ष पद के चुनावों का मजाक बना दिया है, फुटबॉल के महान खिलाड़ी मैराडोना के शब्द। वहीं यूरोप में फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था यूएफए ने कहा है कि ऐसे माहौल में चुनावों को रद्द कर देना चाहिए।
यूएफए शोज दिस फीफा द रेड कार्ड। Today's events are a disaster for FIFA.
UEFA फीफा को इस बात पर लाल कार्ड दिखाती है। आज की घटना की वजह से फुटबॉल की छवि खराब हुई है। ये सब कुछ दिखाता है कि फीफा में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। UEFA के प्रवक्ता जियानी इन्फेंटिनो के शब्द। वहीं 2018 विश्व कप की मेजबानी मिलने पर सवाल उठने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हर बार की तरह अमरीका गलत ढंग से जांच कर रहा है। उनका कहना है कि रूस को फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी मिलने से रोकने के लिए पहले भी अध्यक्ष ब्लैटर पर जोर डाला गया था। उन्होंने कहा, ये अधिकारी अमरीकी नहीं है और अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो वो अमरीकी मिट्टी पर नहीं किया था। अमरीका का इस बात से कोई मतलब नहीं। मुझे यकीन है कि ये कोशिश ब्लैटर को फिर से अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। फीफा अपनी करीब सारी कमाई विश्व कप से करता है। ये दुनिया का सबसे चर्चित खेल आयोजन होता है।
ये थे वैभव श्रीवास्तव और बाकी की खेल की खबरों के साथ सुमरनप्रीत कौर।
स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं सुमिरन। और 19 मई से 7 जून तक होने वाले फ्रेंच ओपन में आज चेक गणराज्य की पेट्रा विटोवा ने हराया सिल्विया सोलर स्पिनोसा को 6-7, 6-4, 6-2 से और राउंड 3 में प्रवेश कर लिया है। वहीं राफेल नदाल ने हराया स्पेन के ही निकोलस अल्मेग्रो को। आज जहां एक तरफ मुकाबला है नोवाक जोकोविच का लग्जमबर्ग के जील्स म्यूलर के साथ, वहीं दूसरी तरफ एंडी मरे का मुकाबला है पुर्तगाल के जाओ सूसा के साथ दूसरे राउंड में। एंडी मरे ने की अपने प्रतिद्वंदी की तारीफ।
मैं उनके साथ पहले खेल चुका हूं। वो अच्छे खिलाड़ी हैं। उनका फोरहैंड काफी अच्छा है। क्ले पे वो काफी अच्छा खेल लेते हैं। उनमें भरपूर कॉन्फिडेंस है और आप अच्छा खेल देखने की उम्मीद कर सकते हैं।
अब बात करते हैं क्रिकेट की। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचेस की श्रृंखला चल रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच पहला ओडीआई मैच हुआ था लाहौर में 26 मई को, जो पाकिस्तान ने अपने नाम किया 41 रन से। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच होगा कल लाहौर में और तीसरा मैच होगा 31 मई को लाहौर में।
ये थी सुमरनप्रीत कौर। अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। राजस्थान में गुजर आंदोलन से पैदा हुआ संकट सुलझने के आसार बन गए हैं। आरक्षण की मांग कर रहे गुजरों और राज्य सरकार के बीच समझौता होने की उम्मीद। भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने इस्तीफा देने से इनकार किया है। अमरीकी रक्षा मंत्री एश कार्टर ने चीन को आगाह किया है कि वो दक्षिणी चीन सागर में कृत्रिम बंदरगाह बनाने से बाज आए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत सरकार पर देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया है। त्रिपुरा सरकार ने सेना को विशेष अधिकार देने वाला विवादित कानून आपसपा 18 साल बाद हटा लिया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने म्यांमार की लोकतांत्रिक समर्थक नेता आंग सान सू की से कहा है कि वो अपने देश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या सुलझाने के लिए और प्रयास करें। बीबीसी समाचार।
शुक्रिया प्रभात पांडे आपका और शुक्रिया शाकिर आलम का भी जो स्टूडियो संभाल रहे थे। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को दें अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी ठीक डेढ़ घंटे बाद।